आप सुन रहे हैं प्रतिनिधि कहानियां बाय इस्मत चुगताई, मेरी यानी सुरभि की आवाज में। और आज की कहानी है मुगल बच्चा। फतेहपुर सिकरी के सुनसान खंडहरों में गोरी दादी का मकान पुराने सूखे जख्म की तरह खटकता था। ककैया ईंट का दो मंजिला घुटा घुटा सा मकान एक मार खाए रूठे हुए बच्चे की तरह लगता था। देखकर ऐसा मालूम होता था कि एक वक्त का जलजला उसकी ढिठाई से हार कर आगे बढ़ गया और शाही शानो शौकत पर टूट पड़ा। गोरी दादी सफेद झक चांदनी बिछे तख्त पर सफेद बेदाग कपड़ों में एक संगमरमर का मकबरा मालूम होती थी। सफेद ढेरों बाल, बेखून की सफेद धोई हुई मलमल जैसी खाल, हल्की भूरी आंखें जिन पर सफेदी रेंग आई थी, पहली नजर में सफेद लगती थी। उन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती थी, जैसे पिसी हुई चांदी की धूल उनके आसपास छाई हुई हो। न जाने कब से जिए जा रही थी, लोग उनकी उम्र 100 से ऊपर बताते थे। खुले खुले गुमसुम बेनूर आंखों से वो इतने साल क्या देखती रही थी, क्या सोचती रही थी, कैसे जीती रही थी। 12-13 बरस की उम्र में वो मेरी अम्मा के चचा दादा से ब्याही तो गई थी, मगर दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट बिना उठाया था। कवारेपन की एक सदी उन्होंने इन्हीं खंडहरों में बिताई थी। जितनी गोरी भी सफेद थी, उतने ही उनके दूल्हा स्याह भट्ट थे। इतने काले कि उनके आगे चिराग बुझे, गोरी भी बुझकर भी धुआं देती रही। सरे शाम खाना खाकर झोलियों में सूखा मेवा भरकर हम बच्चे लिहाफों में दुबक कर बैठ जाते और पुरानी जिंदगी के पत्ते उल्टे जाने लगते। बार बार सुनकर भी जीना भरता। अदबदा कर गोरी भी और काले मियाँ की कहानी दोहराई जाती। बेचारे की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी गोरी गोरी दुल्हन का घूंघट बिना उठाया। अम्मा साल के साल पूरा लाव लश्कर लेके मैके पर धावा बोल देती। बच्चों की ईद हो जाती। फतेहपुर सीकरी के पुरअसरार शाही खंडहरों में आंख मिचौली खेलते खेलते जब शाम पड़ जाती तो खोई खोई सुरमई फिजा से डर लगने लगता। हर कोने से साए लपकते, दिल धक धक करने लगता। काले मियाँ आ गए, हम एक दूसरे को डराते, गिरते पड़ते भागते और ककैया ईंट के दो मंजिल मकान की गोद में दुबक जाते। काले मियाँ हर अंधेरे कोने में छिपे महसूस होते। बहुत से बच्चे मरने के बाद हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ा, तब गोरी बी का मुँह देखना नसीब हुआ। माँ बाप की आंखों की ठंडक गोरी भी बड़ी जिद्दी थी, बात बात पर अखाटी खटवाती लेकर पड़ जाती। भूख हड़ताल कर देती, घर में खाना पकता कोई मुंह न जुठालता, ज्यों का त्यों उठवा कर मस्जिद में भिजवा दिया जाता। गोरी भी ना खाती तो अम्मा बाबा कैसे निवाला तोड़ते। बात इतनी सी थी कि जब मंगनी हुई तो लोगों ने मजाक में छींटे कसे, गोरी दुल्हन काला दूल्हा। मगर मुगल बच्चे मजाक के आदि नहीं होते। 16-17 बरस के काले मियाँ अंदर ही अंदर घुटते रहे, जलकर मुरंडा होते रहे। दुल्हन मैली हो जाएगी, खबरदार यह काले काले हाथ ना लगाना, बड़े नाजों की पली है, तुम्हारी तो परछाई भी पड़ी तो काली हो जाएगी, बड़ी बददिमाग है, सारी उम्र जूतियाँ उठवाएगी। अंग्रेजों ने जब मुगल शाही का फातिहा पढ़ा तो सबसे बुरी मुगल बच्चों पर बीती, क्योंकि वे ही ज्यादा ओहदे संभाले बैठे थे। ऊंचे ओहदे और जागीरें छिन जाने के बाद लाख के घर देखते देखते खाक हो गए। बड़ी बड़ी ढंडार हवेलियों में मुगल बच्चे भी पुराने सामान की तरह जा पड़े, भौचक्के से रह गए, जैसे किसी ने पैरों तले से तख्ता खींच लिया। तभी मुगल बच्चे अपने शानो खुदारी की तार तार चादर में सिमट कर अपने अंदर ही अंदर घुसते चले गए। मुगल बच्चे अपनी दिमागी धूरी से थोड़ा खिसके हुए होते हैं। खरे मुगल की यही पहचान है कि उसके दिमाग के 2-4 पेंच ढीले या जरूरत से ज्यादा तंग होते हैं। आसमान से धरती की तरफ लुढ़के तो दिमागी तवाजुन डगमगा गया, जिंदगी की कदरें गडमट हो गई, दिमाग से ज्यादा जज्बात से काम लेने लगे। अंग्रेज की चाकरी लानत और मेहनत मजदूरी शान के खिलाफ, जो कुछ धन दौलत बची उसे बेच बेच कर खाते रहे। हमारे अब्बा के चचा रुपए पैसे की जगह चाची के जहेज के पलंग के पायों से चांदी का पत्थर उखाड़ ले जाते थे। जेवरों और बर्तनों के बाद गोटे टके कपड़े नोच नोच कर खाए। पानदान की कुलियां सिलबट्टे से कुचलकर टुकड़ा टुकड़ा बेची और खाई। घर के मर्द दिन भर पलंग के अद्वायन तोड़ते, शाम को पुरानी धुली अचकन पहनी और शतरंज पच्चीसी खेलने निकल गए। घर की बीवियां छुप छुप कर सिलाई कर लेती, चार पैसों से घर का चूल्हा जल जाता या मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ा देती तो कुछ नजराना मिल जाता। काले मियां ने दोस्तों की छेड़कानी को जी का घाव बना दिया। जैसे मौत की घड़ी नहीं टलती, वैसे माँ बाप की तय की हुई शादी ना टली। काले मियां सिर झुकाकर दूल्हा बन गए। किसी सरफरी ने ऐन मुंह दिखाई के वक्त और छेड़ दिया, खबरदार जो दुल्हन को हाथ लगाया काली हो जाएगी। मुगल बच्चा चोट खाए नाक की तरफ पलटा, बहन का आंचल सिर से नोचा और बाहर चला गया। जब दूल्हा अंदर औरतों में आता है तो उसकी बहन उसके सर पर अपना आंचल डालकर लाती है। हंसी में खसी हो गई, एक मातम बरपा हो गया। मर्दान खाने में इस ट्रेजेडी की खबर हंसी से उड़ा दी गई। बगैर मुंह दिखाए के रस्म के विदाई एक कयामत थी। खुदा की कसम मैं उसके घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। किसी ऐसे वैसे से नहीं, मुगल बच्चे से वास्ता पड़ा है, काले मियां फुफकारे। काले मियां शहतीर की तरह पूरी मसहरी पर फैले पड़े थे। दुल्हन एक कोने में गठरी बनी कांप रही थी। 12 बरस की चच्ची की बिसात ही क्या, घूंघट उठाओ, काले मियां डकराए। दुल्हन और गुड़ी मुड़ी हो गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, कोहनी के बल उठकर बोले। सहेलियों ने तो कहा था दूल्हा हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, और खबरदार जो घूंघट को हाथ लगाने दिया। दुल्हन जितना भी अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारे उतना ही ज्यादा पाक समझी जाती है। देखो जी, तुम नवाबजादी होगी अपने घर की, हमारे तो पैर की जूती हो। घूंघट उठाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं। दुल्हन को जैसे लकवा मार गया। काले मियां चीते की तरह लपक कर उठे, जूतियां उठाकर बगल में दाबी और खिड़की में से पाई बाग में कूद गए। सुबह की गाड़ी से वो जोधपुर दंदना गए। घर में सोता पड़ा था। एक एकाबी जो दुल्हन के साथ आई थी जाग रही थी। कान दुल्हन की चीखों की तरफ लगे थे। जब दुल्हन के कमरे से च्यों की आवाज भी ना आई तो उनके पैरों का दम निकलने लगा। हाय हाय, कैसी बेहया लड़की है। लड़की जितनी भी ज्यादा मासूम और कमारी होगी उतना ही ज्यादा धुंध मचाएगी। क्या काले मियां में कुछ खोट है, जी में सोचने लगी। दिल चाहा कुएं में कूद कर किस्सा खत्म करे। चुपके से कमरे में झांका तो जी सन्न रह गई। दुल्हन जैसी की तैसी धरी थी और दूल्हा गायब। बड़े उल्टे सीधे किस्म के हंगामे हुए, तलवारें खींची। बड़ी मुश्किल से दुल्हन ने जो उस पर बीती थी कह सुनाई। इस पर तरह तरह की खुसर फुसर होती रही। खानदान में दो पार्टियां बन गईं, एक काले मियां की, दूसरी गोरी बी की। आखिर वो उसका शौहर है, उसका देवता है, उसका हुक्म न मानना गुनाह है। एक पार्टी इस बात पर जमी हुई थी, कहीं किसी दुल्हन ने खुद घूंघट उठाया है, दूसरी पार्टी का कहना था। काले मियां को जोधपुर से बुलवाकर दुल्हन का घूंघट उठवाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। वे वहां घुड़सवारों में भर्ती हो गए और बीवी को रोटी कपड़ा भेजते रहे, जो गोरी बीवी की माँ समधिन के मुंह पर मार आती। गोरी भी कली से फूल बन गई। हर अठवाड़े हाथ पैर में मेहंदी रचाती रही, बंधे टके दुपट्टे ओढ़ती रही और जीती रही। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाबा की मरण घड़ी आन पहुंची। काले मियां को खबर गई तो न जाने किस मूड में थे, भागे आए। बाबा मौत का हाथ झटक कर उठ बैठे, काले मियां को हाजिरी का हुक्म दिया। दुल्हन के आदाबे रुनुमाई पर मिसकॉट हुई। काले मियां ने सिर झुका दिया, मगर शर्त वो ही रही कि चाहे जो हो जाए मगर घूंघट तो दुल्हन को अपने हाथों से ही उठाना पड़ेगा। अब्बा हुजूर, मैं कसम खा चुका हूँ, मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, मगर कसम नहीं तोड़ सकता। मुगल बच्चों की तलवारें जंगी आ चुकी थी। आपस की मुकदमे बाजियों ने सिर का कस बल निकाल दिया था, मगर अहम काना जिद्दे रह गई थी, बस उन्हीं को कलेजे से लगाए बैठे थे। किसी ने काले मियां से पूछा कि तुमने ऐसी बेवकूफी की कसम खाई ही क्यों, कि अच्छी भली जिंदगी एक अजाब बन गई। खैर साहब, गोरी भी फिर से दुल्हन बनाई गई। ककैया ईट वाला मकान फिर फूलों और इतर की खुशबू से महक उठा। अम्मा ने समझाया, तुमसे उसका विवाह हुआ है बेटी जान, घूंघट उठाने में कोई ऐब नहीं, उसकी जिद पूरी कर दो, मुगल बच्चे की आन रह जाएगी, तुम्हारी दुनिया सवर जाएगी, गोदी में फूल बरसेंगे, अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा होगा। गोरी भी सिर झुकाए सुनती रही। कच्ची कली 7 साल में कयामत ढा देने वाली दोशीजा बन चुकी थी। हुस्न और जवानी का एक तूफान था जो तन मन से फूटा निकलता था। औरत काले मियां की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनके सबके सब सोच विचार इसी एक नुक्ते पर मरकूज थे, मगर उनकी कसम एक कारुंदार लोहे के गोले की तरह उनके कंठ में फंसी हुई थी। उनके हवस के 7 सालों ने आंख मिचौली खेली थी। उन्होंने बीसियों घूंघट नोच डाले। रंडीबाजी, लौंडेबाजी, बटेरबाजी, कबूतरबाजी, मतलब कोई बाजी ना छोड़ी, मगर गोरी बी के घूंघट की चोट दिल में पंजे गाड़े रही हो। 7 साल सहलाने के बाद घाव बन चुकी थी। इस बार उसे यकीन था कि उनकी कसम पूरी होगी। गोरी बी ऐसी अकल की कोरी नहीं कि जीने का यह आखिरी मौका भी गवा दे। 2 उंगलियों से हल्का फुल्का आंचल ही तो सरकाना है, कोई पहाड़ तो नहीं ढोना। घूंघट उठाओ, काले मियां ने नरमी से कहना चाहा, मगर मुगलवी दबदबा फातेहा रहा। गोरी बेगम गरूर से तमतमाई सन्नाटे में बैठी रही। आखिरी बार हुक्म देता हूँ, घूंघट उठा दो, वरना इसी तरह पड़ी पड़ी सड़ जाओगी। अब जो गया फिर ना आऊंगा। मारे गुस्से के गोरी भी लाल भभूका हो गई। काश उनके सुलगते हुए चेहरे से एक शोला लपकता और वो मनहूस घूंघट जलकर खाक हो जाता। बीच कमरे में खड़े काले मियां कौड़ियाले सांप की तरह झूमते रहे, फिर जूते बगल में दबाए पाई बाग में उतर गए। जमाना बीत गया, अब तो पाई बाग कहां, उधर पिछवाड़े लकड़ियों के टाल लग गई। बस 2 जामुन के पेड़ रह गए थे और एक कद्दावर बरगद। बेले चमेली की झाड़ियां, गुलाबों के झुंड, शहतूत और अनार के दरख्त पेड़ कब के लुट पिट चुके। जब तक माँ जिंदा रही, गोरी बी को संभाले रही। उनके बाद वह ड्यूटी गोरी बी ने खुद संभाल ली। हर जुमेरात को मेहंदी पीस कर पाबंदी से लगाती, दुपट्टा रंग चुनकर गोटा टाकती और जब तक ससुराल जिंदा रही हर त्योहार पर सलाम करने जाती रही। अब की तो काले मियां गायब ही हो गए, बरसों उनका सुराग न मिला। माँ बाप रो रो कर अंधे हो गए। वो न जाने किस जंगलों की खाक छानते फिरे। कभी दरगाहों में उनका पता मिलता, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े पाए जाते। गोरी बी के सुनहले बालों में चांदी फूल गई। मौत की झाड़ू काम करती रही। आसपास की जमीनें और मकान कौड़ियों के मोल बिकते गए। कुछ पर नए लोग जबरदस्ती बस गए, कुंजड़े कसाई आन बसे। पुराने महल ढहकर नई दुनिया की नींव पड़ने लगी। परचून की दुकान, डिस्पेंसरी, एक मरगिल्ला सा जनरल स्टोर भी उगाया, जहां एल्युमिनियम की पतीलियां और लिप्टन की चाय की पुड़ियों के हार लटकने लगे। एक अदमोई मुट्ठी की दौलत रिस रिस कर बिखर रही थी। कुछ जानदार उंगलियां समेटने में लगी थी। जो कल तक पलंग की अदवाइन पर बैठते थे, झुक झुक कर सलाम करते थे, आज साथ उठना बैठना भी अपनी शान के खिलाफ समझने लगे। गोरी बी का जेवर आहिस्ता आहिस्ता लाला जी की तिजोरी में पहुंच गया। दीवारें ढह रही थी, छज्जे झूल रहे थे। बचे कुचे मुगल बच्चे अफीम का अंटा निगल कर पतंगों के पेंच लड़ा रहे थे। तीतर बटेर सधा रहे थे और कबूतरों के दुमों के पर गिनकर हलकान हो रहे थे। लफ्ज मिर्जा, जो कभी शान और दबदबे की निशानी समझा जाता था, मजाक बन रहा था। गोरी बी कोल्हू के अंधे बैल की तरह जिंदगी के छकड़े में जूती धुरी पर घूमे जा रही थी। उनकी नीली आंखों में सोनेपन ने डेरा डाल दिया था। उनके लिए तरह तरह की कहानियां मशहूर थी कि उन पर जिन्नों का बादशाह आशिक था। ज्यों ही काले मियां उनके घूंघट को हाथ लगाते, चट तलवार सूत कर खड़ा हो जाता। हर जुमेरात को आधी रात की नमाज के बाद वजीफा पढ़ती, तब सारा आंगन कौड़ियाले सांपों से भर जाता। फिर सुनहरी मुकुट वाला नागराज अजगर पर सवार होकर आता है, गोरी बी के पाठ की धुन पर सिर धुनता है। पाँव फटते ही सब सिधार जाते हैं। जब हम किस्से सुनते हैं तो कलेजे उछलकर हलक में फंस जाते और रात को सांपों की फुंकारें सुनकर उठते और चीखे मारने लगते। गोरी बी ने सारी उम्र कैसे कैसे नाक खिलाए होंगे, कैसे अकेली नामुराद जिंदगी का बोझ ढोया होगा। उनके रसीले होठों को कभी किसी ने नहीं चूमा। उन्होंने अपने जिस्म की पुकार को क्या जवाब दिया होगा। अच्छा होता यह कहानी यही खत्म हो जाती, किस्मत मुस्कुरा रही थी। पूरे 40 बरस बाद काले मियां अचानक आप ही आ धमके। उन्हें किस्म किस्म की लाइलाज बीमारियां लग चुकी थी। पोर पोर सड़ रही थी, रोम रोम रिस रहा था, बदबू के मारे नाक सड़ी जाती थी, मगर आंखों में हसरतें जाग रही थी। जिनके सहारे जान सीने में अटकी हुई थी। गोरी बी से कहो मुश्किल आसान कर जाएं। एक कम 60 बरस की दुल्हन ने रूठे हुए दूल्हे को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेहंदी घोलकर हाथ पैरों में रचाई, पानी गर्म करके पिंडा पाक किया, सुहाग का चिकटा हुआ तेल सफेद लटों में बसाया, संदूक खोलकर भर भर टपकता झड़ता शादी का जोड़ा निकालकर पहना और इधर काले मियां दम तोड़ते रहे। जब गोरी भी शर्माती लजाती धीरे धीरे कदम उठाती उनके सिरहाने पहुंची तो छिलंगे पलंग पर चीकट तकिए और गूदड़ बिस्तर पर पड़े हुए काले मियां की मुर्दा हड्डियों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मलकुल मौत से जूझते हुए काले मियां ने हुक्म दिया, गोरी भी घूंघट उठाओ। गोरी भी के हाथ उठे मगर घूंघट तक पहुंचने के पहले गिर गए। काले मियां दम तोड़ चुके थे, वो बड़े सुकून से उकड़ू बैठ गई। सुहाग की चूड़ियां ठंडी की और रंडापे का सफेद आंचल माथे पर खींच लिया।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।